जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, वेलकम टू अथु कृष्ण प्रभु जी की जय, भक्तों की जय, प्रभुपाद जी की जय, सिंधु की जय, रूप गोस्वामी महाराज की जय। आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्रभु जी। अथु कृष्ण प्रभु, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है, यू आर होस्ट ऑल्सो।
Is it now clear? प्रभु आवाज आ रही है?
आ रही है।
Okay, you can make the other one also host, not just this one. There is another ISKCON Greater Noida.
आपके पास स्लो है लेकिन।
अच्छा प्रभु, और एक ISKCON Greater Noida का है, उसको आप बना देंगे होस्ट? Hare Krishna. Now can you hear?
We can hear. It is little slow. I hope otherwise maybe all right also. All log bataye.
Acha, awaaz slow aa rahi hai ya theek hai aap sab ke liye?
Awaaz ekdam sahi hai Prabhu ji.
Okay. Thank you. Main baar nahi le dun.
Acha Prabhu, jo host karna hai isko dusre ko bhi host bana dijiye zara.
Kise banana hai Prabhu ji?
अभी जिस पे फोटो आ रही है उससे अलावा और एक ISKCON ग्रेटर नोएडा होगा
जी। ठीक है प्रभु जी।
तो शेयर करने के लिए इजी होगा, स्क्रीन शेयर कर सकेंगे।
बना दिया प्रभु जी उनको भी।
ओके ठीक है। सो राधाचरण प्रभु, कैन वी स्टार्ट? ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत के भक्तों से काफी समय बाद मिल रहे हैं, आप सबके कुछ लोगों के दर्शन आप में से हो रहे हैं, तो आभारी हैं आप सबके। एंड आई थिंक और भी स्थानों से हैं, उदयपुर से मायापुर धाम प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। हरे कृष्णा। और बहुत सारे डिवोटीज हैं यहाँ पर, गौरांग प्रिय प्रभु हरे कृष्णा। सो धन्यवाद आप सबका। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम सूरत में हैं और फिर से क्लास आप सबको दे रहे हैं। सो आज हम लोग आज से भक्ति रसामृत सिंधु इसका ओवरव्यू, या पूरा तो नहीं कर पाएंगे समय की कमी के कारण, लेकिन उसकी मुख्य बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। ताकि जो ग्रंथ में है भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आशा करते हैं आप सबके पास ये बुक होगी, भक्ति रसामृत सिंधु, और जिनके पास नहीं है वो कृपया कल से लेकर आइएगा, क्योंकि इस बुक के आधार पर ही जो प्रभुपाद ने लिखा है उसके आधार पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं तो भक्ति शास्त्री कोर्स करने का मूल उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए निर्देशों को या उपदेशों को समझने का प्रयास करना। तो इसीलिए इसको हम लोग करेंगे। तो आप सबके पास ये ग्रंथ होना चाहिए कृपया, तो अच्छा रहेगा। ओके, सो प्रारंभ करते हैं। अभी इसके पहले षड गोस्वामी अष्टकम चल रहा था, सो बड़ी अच्छी शुरुआत है वो। जब हम रूप गोस्वामी आदि के ग्रंथों को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो हमें षड गोस्वामी अष्टकम जरूर गा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने किस प्रकार अलग अलग शास्त्रों से, नाना शास्त्र विचारणई कनिपुनो सद्धर्म संस्थापको, अलग अलग शास्त्रों का निचोड़ अपने ग्रंथों में दिया है। तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबके लिए एक स्लाइड्स आपको दिखाएंगे यहाँ पर, जिससे आप सब अच्छी तरह इस ग्रंथ को समझ सके। सो अब प्रारंभ करते हैं इस ग्रंथ की चर्चा, भक्ति रसामृत सिंधु। बड़ा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है और रूप गोस्वामी के ग्रंथों में जितने भी ग्रंथों की रचना उन्होंने की है, रूप गोस्वामी ने बहुत से अन्य ग्रंथों की रचना की है, बहुत से सुंदर सुंदर नाट्य लिखे हैं, श्री कृष्ण लीला के विषय में, श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के विषय में, और उपदेशामृत उन्होंने दिया है, और बहुत से ग्रंथ हैं। लेकिन उन सारे ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु ये बहुत श्रेष्ठ या उनका मास्टरपीस माना जाता है, कहना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वो भक्ति रसामृत सिंधु था। और वो भी इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि रूप गोस्वामी इसको प्रदान करें, और इसीलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हम सबके लिए। तो इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसे इस ग्रंथ में आप देखेंगे प्रारंभ में सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं आमुख से। इसमें छह गोस्वामियों को प्रणाम करके ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, जैसे हम कह रहे थे। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये जो नाना शास्त्र विचारण एक है, ताकि हम प्रणाम कर सकें छह गोस्वामियों को, रूप सनातन इत्यादि की इस ग्रंथ को कहने की शक्ति और इस ग्रंथ को समझने की शक्ति वे हमें प्रदान करें। तो इसीलिए इस ग्रंथ को अभी पढ़ने से पहले इसको कहेंगे, आप सब साथ में दोहराइए। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण परारविन्द भज नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल का। तो हम प्रणाम करते हैं छह गोस्वामियों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को, जिन्होंने क्या किया है, नाना शास्त्र विचार नहीं कनि पुनो, बहुत से शास्त्रों में उन्होंने खोज की, नाना शास्त्र विचार नहीं, सबसे विचार किया और क्या खोज करके क्या निकाला, सद्धर्म संस्थापको, धर्म के सच्चे सिद्धांतों को उन्होंने स्थापित किया। पुराण, वेद, शास्त्र जितने भी हैं, ये सारे वेद, उपनिषद, संहिताएं, पुराण, इनमें बहुत कुछ दिया गया है और इसको समझना, इसमें से सच्चे धर्म को निकालना बहुत कठिन है और वो कार्य इन्होंने किया है। क्यों कठिन है? महाभारत में कहा गया है, तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः सपथा, कि बहुत सारे तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न, तर्क के द्वारा किसी चीज को स्थापित करना, श्रुतयो पुराणों में, शास्त्रों में बहुत सी बातें कही हैं, और नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम, अलग अलग ऋषि अपना अपना मत देते हैं और हर एक का भिन्न होता है, तो कैसे समझें सद्धर्म क्या है। इसीलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, धर्म के तत्व को एक गुफा में छुपा दिया है भगवान ने। शास्त्र तो बहुत सारे दे दिए, क्यों सीधे सीधे सद्धर्म नहीं दिया भगवान ने, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये शंकराचार्य जी की इच्छा है। कौन शंकराचार्य? जिन्होंने सारे शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से अथॉरिटी माने जाते हैं शास्त्र की, वो कहते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवद गीता होनी चाहिए, फिर और क्यों जरूरत है इतने सारे शास्त्र की, और एक ही देव होने चाहिए श्री कृष्ण, एक ही मंत्र होना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वो कहते हैं कि एक ही कार्य होना चाहिए जीव का, तस्य देवस्य सेवा, भगवान की सेवा। लेकिन है नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया, क्यों? अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी भावनाओं को, उनके स्वभाव को, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अलग अलग शास्त्र दिए। तो नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो, बड़े दक्ष हैं ये छह गोस्वामी। क्यों दक्ष हैं? सारे जितने शास्त्र हैं उनमें से विचार करके बड़े निपुण हैं कि सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म की स्थापना की, और किस लिए की, लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, लोगों के हित करने के लिए त्रिभुवने, केवल पृथ्वी पर नहीं सारे ब्रह्मांड में जो भी इन ग्रंथों को पढ़ेंगे उनका निश्चित लाभ होगा। तो लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो, ऐसे उन्होंने इतना शास्त्रों को पढ़ा है जिसका उद्देश्य है कि हम भगवान की शरण जा सकें। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको, शरण लेकर वो क्या कर सकें वो लोग, राधा कृष्ण पदारविंद भजना, भगवान के भजन में लग सकें, राधा और कृष्ण की पूजा कर सकें, भजन कर सकें, नंदे नमत्तालिको, जो भाव ब्रजवासियों का है उस भाव में भगवान की पूजा कर सकें। तो ये छह गोस्वामियों ने किया है और हमारा बड़ा भाग्य है कि हम उस परंपरा में हैं जहां ये छह गोस्वामियों ने इस सद्धर्म की स्थापना की, इसीलिए हमें वही ज्ञान जो छह गोस्वामियों ने दिया परंपरा के द्वारा आ रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इस भक्ति रसामृत सिंधु को इसको सार में प्रस्तुत किया है इस ग्रंथ में, इसमें श्लोक नहीं लिए प्रभुपाद ने, लेकिन जो श्लोक लिखे हैं रूप गोस्वामी ने उसको सरल भाषा में हमारे लिए प्रस्तुत किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु वैसे ही क्यों नहीं ट्रांसलेट किया जैसे भगवद गीता की, जैसे भागवत किया, श्लोक लिया, उसका अशब्दार्थ दिया, फिर अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया, तो प्रभुपाद ने सार इसलिए दिया, नाना शास्त्र विचारणई कनिपुणो सद्धर्म संस्थापको। उन्होंने विचार करके अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण दे दिए हैं, प्रभुपाद ने उसको सरल भाषा में समझाया। अगर उस भाषा में समझाते तो हम लोग को शायद समझ नहीं आता, और फिर आवश्यक था कि सार में ही दे दे, क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें हैं जो हो सकता है हमारे लिए इतनी आवश्यक इस स्तर पर, हमारे भक्ति के स्तर पर ना हो। जैसे इस ग्रंथ को कई अध्याय हैं, लेकिन भक्ति शास्त्री स्तर पर भी हम केवल 19 अध्याय पढ़ते हैं, क्यों? आगे के अध्याय हमारे स्तर के नहीं है, इसलिए सार के रूप में प्रभुपाद ने इसको प्रस्तुत किया है और हम सब इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु है। प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं आमुख से, आमुख या प्रिफेस जिसको आप लोग कहते हैं, तो आप उसको अब खोल सकते हैं पढ़ने के लिए। हम लोग इस इन 19 अध्यायों में पूरा नहीं पढ़ेंगे, जब भक्ति शास्त्री की क्लासेस रेगुलर क्लास होती हैं उसमें तो पूरा पढ़ते हैं, लेकिन इस समय पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसको। थोड़ा थोड़ा बीच में अध्ययन करेंगे और बाकी क्या प्रमुख चीजें इसमें हैं वो हम आपको समझाते जाएंगे। तो आमुख में प्रमुखतः आप अभी जो इस समय आपके स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे हैं, तो ये आमुख की चर्चा है कि आमुख में क्या प्रभुपाद ने वर्णन किया है। प्रमुखतः दो वर्णन है, एक इतिहास का, इस ग्रंथ का इतिहास, रूप गोस्वामी की स्थिति इत्यादि, और दूसरा उद्देश्य है कि ये ग्रंथ क्यों दिया है। और प्रमुखतः 6 उद्देश्य यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, तो इसलिए ये इसको हम ग्रंथ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जो 6 उद्देश्य यहाँ लिखे हैं ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इतिहास पहला भाग प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं रूप गोस्वामी की स्थिति से। अभी हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, अब केवल आपको बता रहे हैं कि क्या क्या विषय हम लोग आमुख में पढ़ने वाले हैं, फिर भूमिका पर जाएंगे या परिचय पर, और फिर पहले अध्याय पर, लेकिन इन विषयों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास में रूप गोस्वामी की स्थिति दी गई है, भक्ति रसामृत सिंधु का इतिहास दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत दिया गया है, और फिर उद्देश्यों में प्रमुख 6 उद्देश्य दिए गए हैं। पहला उद्देश्य इस ग्रंथ का, हम सबको गोस्वामी बनाना। दूसरा उद्देश्य, अभी हम इसके एक एक उद्देश्य की चर्चा भी करेंगे विस्तार से। दूसरा उद्देश्य भक्ति रस और भौतिक रस, इसके मध्य के भेद का वर्णन हुआ है कि क्या भेद है। फिर इस जगत में रहते हुए भक्ति करने के व्यवहारिक लक्षण, कैसे हम प्रैक्टिकली भक्ति कर सकते हैं, वो प्रभुपाद ने शुरुआत में ही दे दिया। तो ये जो यहाँ पर आमुख लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, तो उसमें दिया है। चौथा उद्देश्य दिया है कि किस प्रकार हम 5 विभिन्न रसों में मूल प्रेम को जागृत कर सकते हैं। 5 प्रमुख रस, तो हम लोग चर्चा करेंगे 12 रसों की, 5 प्रमुख और 7 गौण रस, और सभी जीवों को जीवों से प्रेम करने का विज्ञान, इस उद्देश्य भी है ना, भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य है कि हम सभी जीवों से प्रेम कर सकें। और आखिरी उद्देश्य है साधकों के भक्तिमय जीवन का पोषण। मूलतः ये ग्रंथ भक्तों के लिए है, मूलतः। और ये ग्रंथ वैसे तो भक्तों के लिए है, और भी लोग अध्ययन करेंगे जो भक्त नहीं हैं, लेकिन एक चेतावनी आपको हम देना चाहते हैं, हम आगे देना चाहते थे, हम पहले ही दे देते हैं। ये चेतावनी हम नहीं, जीव गोस्वामी दे रहे हैं। तो जीव गोस्वामी ने एक चेतावनी दी है, उन्होंने कहा कि अगर इस ग्रंथ को भक्ति प्राप्त करने के अलावा किसी और उद्देश्य से कोई पढ़ेगा तो मैं उसे श्राप दे दूंगा। हमने सोचा आपको प्रारंभ में ही बता दें ताकि आपको इस ग्रंथ के पढ़ने का स्पष्ट उद्देश्य, हम यहां से उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं भक्ति इत्यादि, तो जीव गोस्वामी ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी कि अगर भक्ति प्राप्त करने के अलावा किसी और उद्देश्य से इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनका श्राप हमें मिलेगा। तो इसलिए अब इन उद्देश्यों की चर्चा हम लोग करेंगे, कैसे हम इसको समझ सकते हैं आमुख को। वैसे आप में से किसी को भी बीच में प्रश्न हो, जैसे आप जानते हैं कि जब हम लोग शास्त्री की चर्चा करते हैं तो बीच बीच में प्रश्न लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस समय जूम पर ये क्लास हो रही है तो हम कहेंगे कि आप प्रश्न आए तो लिख लीजिए, और क्लास के अंत में, क्योंकि बीच में हमें भी देखना किसने हाथ उठाया, कौन बोलना चाहते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे और रह जाएगा, तो हम अंत में इन प्रश्नों को ले लेंगे। तो इसीलिए जो भी प्रश्न आपके मन में आए उसी समय लिख लीजिए, फिर हम लोग इस पर, ये क्लास 9:30 बजे तक है तो हम 9:15 बजे इसको रोकेंगे और 15 मिनट प्रश्नोत्तर होगा। तो आप सबको जो भी प्रश्न पूछने हैं उस समय आप पूछ सकते हैं। तो अब आमुख में जो चर्चा प्रभुपाद ने प्रारंभ की है, रूप गोस्वामी की वो चर्चा करते हैं कि रूप गोस्वामी का वर्णन वो करते हैं कि कैसे उनका पूर्व का जीवन साकर मलिक, दबीर खास, रूप गोस्वामी और सनातन, ये उनकी पदवियां थी, नाम नहीं थे, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इत्यादि, तो ये उनकी पदवियां थी। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि पहले के नाम उनके अमर और संतोष रहे हैं, तो फिर उनको ये पदवियां दी गई, साकर मलिक, दबीर खास, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो राजा था, नवाब था, तो वो बहुत ज्यादा हिंदुओं को परिवर्तन कर रहा था। फिर उसने देखा, उसने सुना कि ये दो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लोगों ने कहा अगर ये दो आपके मंत्री बन जाएं तो फिर आपको अपने राज्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इन दोनों को कहा, इन दोनों ने सीधे मना कर दिया, हम तो नहीं आएंगे, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये ऐसा नहीं है कि आगे चलकर भक्त बने, बचपन से भक्त हैं, उनका घर वृंदावन था, उसमें यमुना थी, उसमें गोवर्धन था, दिन भर भागवतम की चर्चा करना, कई विद्वान आते थे जो भागवतम की चर्चा करते थे उनसे, तो ऐसे कई लोग थे, तो यही उनका कार्य था, और बड़े विद्वान थे, लोग उनके पास कुछ सलाह लेने आते थे कैसे करें क्या करें, तो वो स्वतः ही एक लोगों के नेता बन चुके थे, किसी ने स्थापित नहीं किया था लेकिन वो थे। तो जब राजा ने कहा, नवाब ने कहा कि नहीं तुम्हें तो हमें आप मंत्री बनाएंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो उस समय बड़ा प्रयास किया, जब नहीं माने तो इन्होंने क्या किया, जो नवाब थे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ब्राह्मणों को मुसलमान बनाना शुरू किया। उस समय कुछ ऐसे नियम थे जो बड़ा सरल था मुसलमान बनाना, जैसे मान लीजिए किसी मुसलमान ने जल पीकर वो जल आपके ऊपर थूक दिया, फेंक दिया, तो आप मुसलमान हो गए। तो ऐसे उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को मुसलमान बनाना शुरू किया। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो उस समय थे, उन्होंने सोचा कि इस तरह तो ये सारा परिवर्तन हो जाएगा, और केवल इसलिए कि हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसके मंत्री नहीं बन रहे हैं। तो उसने कहा अगर आप मंत्री बन जाओगे तो मैं ये बंद कर दूंगा ये परिवर्तन। तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इन्होंने मंत्री बनना स्वीकार किया। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अगर इतने विद्वान थे, भागवत पढ़ते थे और घर में ही पूरा वृंदावन बना हुआ था, बचपन से पढ़ते थे, स्वप्न में इनको भागवतम पढ़ने का आदेश हुआ था, तो फिर इन्होंने ऐसे मुसलमान नवाब की सेवा क्यों स्वीकार की ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। तो फिर ये दोनों उनके अधीन रहने लगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे वो रहे। और फिर आगे चलकर जब चैतन्य महाप्रभु आए राम केली में, तब चैतन्य महाप्रभु से ये मिले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और कैसे मिले, दंत तृणधारी, बहुत नम्रता से। हालांकि इतने विद्वान थे, अब तो राजा के भी बड़े मंत्री हो चुके थे, धनवान थे, विद्वान थे, सब कुछ था, लेकिन जब महाप्रभु से मिले तो बड़ी नम्रता से। और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमें बड़ा ज्ञान है, लेकिन हम तो ये भी नहीं जानते कि हम हैं कौन और ये तीन ताप हमें क्यों सता रहे हैं। और लोग कहते हैं कि हम बड़े ज्ञानी और मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन हम मूर्ख हैं। तो ये भाव था, ये नम्रता थी उनकी। किस लिए? क्योंकि ज्ञान था। ज्ञान नम्रता की ओर ले जाना चाहिए। अगर ज्ञान अहंकार की ओर ले जा रहा है तो वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। सच्चा ज्ञान नम्र बनाता है व्यक्ति को। और नम्रता कैसी? दिखावे की नम्रता नहीं, नम्रता वो जो श्री कृष्ण को हृदय में स्थापित होने का स्थान दे। सच्ची नम्रता वो है कि हम अपने हृदय को इतना नम्र, इतना कोमल बनाएं जहां श्री श्री राधा और कृष्ण आकर विराजमान हो सकें। तो ऐसे ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के उदाहरण से हम देखते हैं। और फिर महाप्रभु ने उद्धार किया। आगे चलकर रूप गोस्वामी पहले घर से बाहर चले गए। अब उन्होंने सोच लिया कि अब महाप्रभु आए हैं, अब भगवान आ गए हैं, अब हमें ये राजा की भी कोई चिंता नहीं, अब वही सबका उद्धार करेंगे। तो दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब हम छोड़कर बस महाप्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन दोनों एक साथ छोड़ेंगे तो वहां थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो रूप गोस्वामी ने निश्चय किया और रूप गोस्वामी चल दिए। अब सनातन गोस्वामी यहीं रहे थे। ये कथा हम लोग जानते हैं कि कैसे बाद में सनातन गोस्वामी आए, हम विस्तार में नहीं जा रहे। तो रूप गोस्वामी चल दिए। बहुत स्थानों से होते हुए फिर पता चला उनको कि महाप्रभु हैं। तो फिर प्रयाग में वहां पर एक घाट है, दशाश्वमेध घाट, तो वहां पर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले। वर्णन है कि वो जब गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग महाप्रभु के आसपास है, रूप गोस्वामी दूर ही रहे, अपने आप को बड़ा नीच मान रहे थे। नम कि मैंने एक मुसलमान की नौकरी कर ली, मैं तो नाम भी, मेरा टाइटल भी हो गया था, मुझे पदवी दे दी गई थी, तो मैं तो बड़ा पतित हूँ, इन वैष्णवों के बीच बैठने की मेरी योग्यता नहीं है। दरअसल हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम भक्ति करते हुए कुछ अहंकारी हो जाते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन अगर हम सही में भक्ति कर रहे हैं तो हमें अन्य भक्तों को देखते हुए, जब हम अन्य भक्तों को देखें तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए जो रूप गोस्वामी के मन में आया, इतने बड़े वैष्णव हैं, मेरी योग्यता नहीं है इन सब के साथ बैठने की। और हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े वैष्णव हो गए हैं, हमने बड़ा ज्ञान ले लिया है, हम अब इसको सिखाएंगे, हम प्रवचन देंगे और ये लोग सब सुनेंगे। नहीं, हमें दास दास दासानुदास इस शब्द को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जब वैष्णवों के बीच में आए तो कभी अपने आप को योग्य नहीं मानना चाहिए, हमेशा ये मानना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं। ये तो कृपा है, ये वैष्णवों की कृपा है कि मुझे अनुमति देते हैं अपने साथ बैठने की, अपने साथ प्रसाद लेने की, अपने साथ कीर्तन करने की, अपने साथ कथा सुनने की, या कथा सुनाने की, या श्रवण करवाने करने की, हमारे साथ में बैठकर हम श्रवण कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये भाव हम हम रूप गोस्वामी से सीखते हैं। तो इसलिए हर एक भक्त को, क्योंकि हम लोग रूपानुग हैं, प्रभुपाद लिखते हैं रूपानुग मतलब हम रूप गोस्वामी का अनुगमन करने वाले हैं, तो हम जब रूपानुग हैं तो उनके आचरण से हम सीखें। आज तो संक्षेप में कह रहे हैं, किसी दिन उनके जीवनी को कहेंगे, प्रारंभ से जीवन के उन्होंने हमें शिक्षाएं देना शुरू कर दिया था। तो रूप गोस्वामी बड़ी नम्रता से दूर खड़े हैं और बहुत समय बाद फिर वो मिले महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने 10 दिन तक रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर प्रवचन दिया और बहुत से कुछ भक्ति का विषय बताया। ये रूप शिक्षा चैतन्य चरितामृत में एक बहुत मधुर अध्याय है, उसमें आता है, या फिर जो एक ग्रंथ पब्लिश हुआ है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो उसमें वो संवाद आता है बहुत विस्तार से क्या क्या समझाया रूप गोस्वामी को, और उन्हीं शिक्षाओं को लेकर रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की है। तो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि अभी ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में कार्य करता है, क्योंकि रूप गोस्वामी पर विशेष कृपा हुई चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, और इसीलिए रूप गोस्वामी को श्रेष्ठ माना गया सारे गोस्वामियों में से। तो रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की। तो अब इस ग्रंथ में आगे प्रभुपाद आमुख में वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी का वर्णन करने के बाद कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का क्या सिद्धांत है। ये थोड़ा सा हिंदी के फॉन्ट में थोड़ी सी गलती हुई है, आप लोग उसको ध्यान में दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या सिद्धांत है उसका वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गोस्वामी अर्थात जो भक्त है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, ये ब्राह्मण सभ्यता की सर्वोच्च स्थिति है। जो कृष्ण वेत्ता है और कृष्ण सेवा में संलग्न है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, फिर वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, कोई लाभ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही भागवत वो भगवद गीता का सिद्धांत है। प्रभुपाद कहते हैं भगवदगीता में भी भगवान ने यही स्थापित किया, भागवत में भी यही सिद्धांत है कि जो भगवान की भक्ति में लगा है चाहे कितना ही नीच क्यों ना हो, शुद्ध्यन्ति किराठुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभायवना कसादयः ये अन्ये च पापायद पाशयाशया शुद्धन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। शुद्ध हो जाता है कोई भी किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा, कोई भी नीचे कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण वेत्ता है और कृष्ण सेवा में संलग्न है। और इसीलिए इस भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा सभी को गोस्वामी पद तक उठाने का प्रयास रूप गोस्वामी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए सिद्धांत से। आगे प्रभुपाद वर्णन करते हैं इस आमुख में दो प्रकार के रसों का, भौतिक रस और भक्ति का रस। ये दो रसों का वर्णन प्रभुपाद ने किया, विशेषतः भक्ति का रस, क्योंकि ये भक्ति रस अमृत सिंधु है। तो इसलिए अब प्रारंभ कर रहे हैं को समझाना। पहले बताया रूप गोस्वामी ने इसको दिया, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को बताया, और अब भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु का वर्णन कर रहे हैं। तो भक्ति रस का वर्णन करने में प्रारंभ करते हैं, दो प्रकार के रस हैं, एक भक्ति और दूसरा भौतिक रस। दरअसल दो ही रस हो सकते हैं इस जगत में, या दो ही प्रकार के लोग हो सकते हैं जिनको हम समर्पण करें, एक कृष्ण दूसरा माया। तो जब कृष्ण को समर्पण करते हैं और उसमें जो आनंद आता है वो भक्ति रस कहलाता है, जो जब माया को समर्पण करते हैं उसमें जो आनंद आता है वो भौतिक रस कहलाता है। उसमें भी आनंद है ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत का आनंद नहीं है, क्योंकि अगर भौतिक जगत में आनंद नहीं होता तो लोग इतना भौतिकता में नहीं लगे होते, लेकिन वो भी एक रस है। तो उस दोनों रसों की तुलना श्रील प्रभुपाद करते हैं। तो जो सांसारी रस है, जो इंद्रिय तृप्ति से आता है, उसके विषय में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो रस है इसमें दो दोष हैं। पहला, ये स्थिर नहीं है, चपल सुख है। हम लोग भजन भी गाते हैं ना कि चपल सुख लब लागे, कि इस चपल सुख के लिए जो रहने वाला नहीं है, हम बहुत सारा प्रयास करते हैं, कृपण दुर्जन ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो कृपण है दुर्जन है, किस लिए? चपल सुख लब लागे। तो जो भौतिक सुख है ये चपल सुख है, चपल मतलब रहता नहीं है एक जगह, स्थिर नहीं रहता, चंचल कह देना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है, उनका एक नाम है चंचला, तो क्यों? वो एक स्थान पर कभी नहीं रहती। तो जो सुख है ये चपल सुख है, पल भर में बदल जाने वाले सुख को चपल सुख कहते हैं। और दूसरा दोष इस भौतिक सांसारिक सुख का है कि इसमें संतुष्टि नहीं होती। व्यक्ति कभी भोग करता है, कभी त्याग करता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि बहुत समय काम करते हैं, फिर शनिवार रविवार को कहीं घूमने जाते हैं, उसमें भी फिर वहां संतुष्टि नहीं, फिर से आ जाते हैं काम करने। जैसे पेंडुलम होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे है भोग त्याग, भोग त्याग। ये भौतिक रस है। और कभी कभी यही रस का आस्वादन हम भक्ति में भी कर लेते हैं क्योंकि अभी तक बाहर नहीं गए हैं भौतिकता से, इसीलिए भक्ति में भी तीव्रता और फिर ढीले हो जाना, ढीलापन। पुरुषोत्तम महीना आता है, हम सोचते चलो सब जल्दी सुबह सुबह उठना है, सबको करना है, जल्दी उठते हैं, सब करते हैं, और जैसे ही कुछ दिन समाप्त हो जाते हैं फिर वही पुनः मुंशी का भवा। तो ये भौतिक सुख है और अंततः ये सुख। तो दो दोष हैं सुख के, चपल सुख और भोग त्याग, ये प्रभु बात समझाते हैं। और अंततः मृत्यु के द्वारा ये बाधित होता है। चाहे कितना ही आप सुख ले लीजिए, अंत में तो समाप्ति हो जाएगा। मृत्यु के समय तो किसी को सुख नहीं होता, कोई भौतिकवादी सुखी नहीं होता, क्योंकि बड़ा दुख होता है। क्या क्या जा रहा है उसको लगता है, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा। अभी मुझे, मैंने अभी नई नई जमीन खरीदी थी, वहां बिल्डिंग बनानी थी, पता नहीं क्या होगा। ये सारी बातें भौतिक सुख, संतुष्टि नहीं है। लेकिन मृत्यु पे बाधित हो जाता है, बढ़ा नहीं सकते उसके आगे। ये नहीं कर सकते कि ठीक है कोई बात नहीं, मर रहा हूं ना, अगले जन्म में आके इस बिल्डिंग को पूरा करूंगा, बिल्कुल नहीं, सुख समाप्त। और अगले जीवन में मनुष्य जन्म लेने की निश्चितता नहीं है भौतिक सुख की। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। कर्म बंधन ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, और इसीलिए अगले जन्म में जो भौतिक सुख की कामना करते हैं, अगले जन्म में निश्चित नहीं है कि ये मनुष्य जीवन ही लेंगे। हो सकता है ना ले, हो सकता है पशु बने, हो सकता है क्या, कह देना चाहिए कि बनेंगे ही, क्योंकि जो पशु की तरह कार्य करेगा भगवान कहेंगे क्यों मनुष्य जीवन में रह रहे हो, कष्ट ले रहे हो, जाओ पशु बन। तो ये भौतिक सुख या संसारी सुख है। अब आगे भक्ति के सुख की भी बात कर लेते हैं, या भक्ति के रस की। तो भक्ति रस क्या है? निरंतर आस्वादित किया जा सकता है, इसीलिए इसको अमृत कहा है, भक्ति रस अमृत सिंधु। तो निरंतर आस्वादित किया जा सकता है, अमृत कभी मरता ही नहीं है, ये अमृत है। और ये मृत्यु के पश्चात भी बना रहता है, अर्थात जब मृत्यु नहीं हुई तब भी निरंतर आस्वादन किया जा सकता है भक्ति का। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, भौतिक सुख भी थोड़े समय आस्वादन करते हैं, फिर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तो भौतिक सुख नहीं होता। इसी तरह भक्ति में भी थोड़ा बहुत व्यक्ति भक्ति में जब अच्छा रहता है, अच्छी स्थिति में आनंद लेता है, जब भक्ति में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो फिर कहाँ वो आनंद लेता है। ये अंतर है, भेद है। जब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भक्ति नहीं कर रहा, उसके जीवन में कष्ट आते हैं, तो उसका आनंद रुक जाता है, खत्म, बंद। लेकिन जब भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उसका आनंद और बढ़ जाता है। ये भक्त भी कभी कभी नहीं समझ पाते, लेकिन वो आनंद बढ़ जाता है। कैसे? बड़ा दुख होता है, कोई कारण हो जाता है, भक्ति में कोई अपमान हो जाता है, भक्तों से मतभेद हो जाता है, कोई बहुत प्रिय भक्त कहीं दूर चले जाते हैं या वो छोड़कर चले जाते हैं, और भक्त दुख, बड़ा कष्ट होता है, हमें लगता है क्या किया भगवान ने, ऐसे क्यों किया। लेकिन एक चीज देखिए कि उसी समय में भगवान का स्मरण कितना तीव्र हो जाता है। इतना हम भगवान को बार बार वैसे नहीं कहते, रोज के दिनों में क्या आप कभी कहते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब कष्ट होता है तो 24 घंटा हम ये कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। कहने का तात्पर्य यह है कि 24 घंटा भगवान का स्मरण होता है, और भगवान का स्मरण किसी भी रूप में क्यों ना हो। गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषात चेदादय नृपः, संबंधा तो चाहे द्वेष से हो, संबंध से हो, भय से हो, क्रोध से हो, भगवान का स्मरण हो गया, मुक्ति के पथ पर है, और वो दरअसल एक आनंद लाता है। तो इसलिए भक्त के जीवन में कष्ट भी आनंद देता है, इसीलिए इस जीवन में भी निरंतर आस्वादन होता है, जैसे आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, और मृत्यु के पश्चात भी। क्यों मृत्यु के पश्चात होता है? मृत्यु के पश्चात तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो जैसे देखते हैं कि भौतिक सुख है, मर गए, अब शरीर दूसरा लेंगे, तो भक्ति में भी तो हम शरीर दूसरा लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम सब अभी मुक्त होने वाले हैं। तो फिर हाँ, भले शरीर बदल जाए, लेकिन भक्ति बनी रहेगी, भाव बना रहेगा। और इसका उदाहरण हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं। प्रारंभ में हमने जीवन जिया, कई हम में से कई लोगों ने, आप सब में तो नहीं जिया होगा, आप सब तो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन हमारी अपनी बात करें तो हम लोगों ने तो बड़ा ऐसा जीवन जिया जहाँ भक्ति, शुद्ध भक्ति का कोई प्रमाण नहीं था कि हम कभी जीवन में भक्ति करेंगे, हाँ एक धार्मिक जीवन बस। लेकिन अचानक जीवन में बदलाव आए, और इतना बदलाव आए कि फिर पूर्ण भक्ति का जीवन हो गया, और अचानक कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में इस भक्ति को किया होगा, तभी अब बनी हुई है, और जैसे ही हम फिर से उसके संपर्क में आए, वही चेतना पुनः जागृत हो गई, वही रस पुनः आने लगा। कौन सा रस? जिसको हम पहले आस्वादन कर रहे थे। तो इसीलिए ये मृत्यु के पश्चात भी निरंतर बना रहता है, और इसको भगवान भगवत गीता में गारंटी देते हैं कि आपको कुछ नहीं होने वाला, चिंता नहीं करो, थोड़ी भी भक्ति करोगे, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। और अगले जीवन में कम से कम मनुष्य जन्म की तो निश्चितता है, ये निश्चित है। तो ऐसे प्रभुपाद इसको यहाँ पे समझाते हैं कि अगले जन्म में तो भक्ति रस की और वो प्रवृत्तियां बताते हैं, विभिन्न प्रवृत्तियां। पहला, ये मानव जीवन को शुभत्व प्रदान करता है, सभी प्रकार की बुरी चिंताओं से मुक्त करता है, दिव्य जीवन प्रदान करता है। साथ ही साथ भक्ति का रस भगवान का ध्यान आकृष्ट करता है। अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय में 6 लक्षण पढ़ने वाले हैं शुद्ध भक्ति के, और उनमें से एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति भगवान को आकृष्ट करती है, और फिर मुक्ति की भावना को उत्पन्न करता है, मतलब इस जगत को, इस भौतिक रस को त्यागने की भावना, और सभी उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। हमारा सारा भौतिक जीवन उपाधियों में फंसा हुआ है। 84 लाख योनियों में हमें उपाधियां मिलती हैं, फिर मनुष्य बन जाए तो उसमें उपाधियां मिलती हैं, वर्णाश्रम हो उसमें उपाधियां मिलती हैं, कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी कोई गृहस्थ बनते, सब उपाधियां हैं शरीर की। आत्मा की उपाधि है वैष्णव, बाकी सब शरीर की उपाधियां हैं। और इसीलिए उन उपाधियों से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति, समाज में रहते हुए निश्चित ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी या वैश्य शूद्र ब्राह्मण अवश्य रहता है, कार्य भी करता है उसके अनुसार, लेकिन अगर भक्त है भक्ति हृदय में है तो फिर वो वैष्णव कहलाता है, वो इन पदवियों से परे हो जाता है। और ऐसा वैष्णव सारे संसार को कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकता है। शिल प्रभुपाद सन्यासी थे और सन्यासियों के लिए विवाह कराना, विवाह में जाना तक सन्यासी अधिकतर नहीं जाते। प्रभुपाद ने प्रारंभ में आंदोलन के खुद विवाह करवाए, यज्ञ किया विवाह का। कोई कह सकता है कि अरे ये कैसे सन्यासी है, नहीं उन्होंने कराया क्योंकि आवश्यकता थी। हाँ बाद के समय में प्रभुपाद ने नहीं किया लेकिन आवश्यकता थी, और आवश्यकता ही नहीं थी, प्रभुपाद वैष्णव है इसलिए ये उपाधियां सन्यासी गृहस्थ, जैसे प्रभुपाद पहले गृहस्थ थे फिर सन्यासी बने, केवल उपाधियां हैं, ये एक वैष्णव को स्पर्श भी नहीं करती है। केवल वैष्णव इनका उपयोग करके समाज को एक शिक्षा प्रदान करते हैं। इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं भक्ति के द्वारा, और जब उस शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगते हैं तो उस भक्ति रस का निरंतर आस्वादन हो सकता है। तो ये भक्ति रस का वर्णन श्रील प्रभुपाद करते हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस रस का वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि हमारी जो प्रेम की प्रवृत्ति है, हम जो प्रेम करना चाहते हैं, हर जीव में प्रेम की प्रवृत्ति, ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रेम नहीं करना चाहता। पशुओं को देख लीजिए, आप किसी पशु को बड़े प्रेम से ऐसे हाथ फिराइए उसके सर पर, वो आराम से बहुत आनंद लेता है, उसको अच्छा लगता है, वो प्रेम चाहता है। आप किसी गौशाला में जाइए, गायों के गले में यहाँ पर ऐसे हाथ कीजिए, गाय बड़े ऐसे ही मुंह करके खड़ी रहेगी, और फिर आप बंद कर दोगे तो फिर से आपको कहेगी और करो थोड़ा और करो। बैल की पीठ पर आप हाथ फेरिए, बैल को बड़ा आनंद आता है, और गाय बैल ही तो किसी भी प्राणी को, सड़क पर चलता हुआ कुत्ता है, अगर आप थोड़ा सा उसको रोटी खिला के उसके सर पर हाथ फेर दें, वो बड़ा आनंद होगा, आपके पांव चाटने लगता है, बड़ा आनंद आता है उसको। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, और विशेषतः मनुष्य जीवन में तो हम सब प्रेम की कामना ही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम विस्तरित होता है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको केवल इस चित्र के द्वारा हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने लिखा कि जो बद्ध जीवात्मा है, अब आप ये जो सारे चक्र हैं इन चक्रों के मध्य में देखिए, मध्य में बद्ध जीवात्मा है, और ये बद्ध जीवात्मा प्रभुपाद कहते हैं प्रारंभ करता है प्रेम करना ही चाहता है। प्रेम क्यों बढ़ता जाता है इसकी भी तुलना कर वर्णन करते हैं। तो बद्ध जीव प्रेम करना चाहता है अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने परिवार के जनों से, तो पहले वो प्रेम करता है, छोटा बच्चा होता है तो वो अपने घर के लोगों से प्रेम करता है, फिर धीरे धीरे क्योंकि प्रेम में संतुष्टि नहीं होती, पूर्णता नहीं होती, तब वो फिर और आगे बढ़ता है, तो परिवार के बाद फिर वो देश समाज इत्यादि से प्रेम करने लगता है। आप लोग इस चित्र में अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखें, उसको भी हम समझाएंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि परिवार फिर देश फिर मानव समाज, यहाँ जो सारी चीजें हैं वो उनके ऊपर एरोस नहीं है लेकिन अंत में है, तो वो क्यों है वो समझाएंगे। तो परिवार, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती, फिर वो चाहता है मैं देश की सेवा करूं समाज की सेवा करूं, तो वो उनसे प्रेम करने लगता है। फिर जब उसका और प्रेम बढ़ता है तो वो देश की सीमाओं के परे मानवता से प्रेम करने का प्रयास करता है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने मानवता के लिए बड़ी सेवा की, ये नहीं देखा किस देश का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, तो वो फिर ऐसे प्रेम करते हैं। लेकिन अंततः वो प्रेम जब और बढ़ता है, उसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती, तो वो प्रेम भगवान की ओर जाता है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे प्रेम की पूर्णता होती है कृष्ण से प्रेम करने में। और इसीलिए जो एरोज हैं कि अब वो प्रेम असीमित रूप से बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, तो ये बढ़ने वाला प्रेम है। बाकी सारे प्रेम सीमित हैं, परिवार से कर लिया, थोड़े समय में कामना होती है कि परिवार नहीं, अब समाज से कर लिया, समाज से कर लिया, अब होता है नहीं राष्ट्र से कर लिया, राष्ट्र से हो गया, अब पूरे मानवता से कर लिया, अब मानवता से हो गया तो भी सीमित है, अब कृष्ण से करें। और कृष्ण पर प्रेम आने के बाद फिर कोई भावना नहीं रहती, फिर कोई कामना जीव नहीं करता कि अब हम और किसी से करेंगे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, पूर्ण संतुष्टि है कृष्ण प्रेम। और इसीलिए अगर हम लोग अपने अपने हृदय में भी देखें तो जिस चीज को प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये चीज हमारे हृदय में भी है। हम सब प्रेम करना चाहते हैं, धन कमा के, प्रसिद्धि प्राप्त करके, इवन भक्ति में आके। आप देखिए, भक्ति में आकर भक्तों को आनंद तब आता है जब साथ में आकर कोई बहुत मिलते हैं, प्रेम का आदान प्रदान होता है। आप सोचिए, भक्ति हो, भक्त हो सब, आप सब आए एक साथ, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करे, कोई देखे भी नहीं क्या हो रहा है, कोई बीमार है नहीं है, कोई ठीक है नहीं है, भक्ति कर रहा है नहीं है, कुछ नहीं देखे, तो हमें भक्ति में आने का प्रेरणा नहीं मिलेगी। हम फिर वापस जाना चाहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारा घर है, कम से कम हमारे घर वाले पूछते तो हैं। तो भक्ति में भी आकर हम उस प्रेम को और चाहते हैं। और इसीलिए भक्तों में कभी कभी जब मन मुटाव होते हैं या कुछ भक्त कह देते हैं तो बड़ी चोट लग जाती है हृदय को। अरे क्यों लग जाती है, घर में भी कोई कह देता आपको चोट नहीं लगती, क्यों? क्योंकि प्रेम इतना फैल चुका है कि अब यहाँ केवल प्रेम की आशा, अब यहाँ आशा नहीं है कि भक्त प्रेम के अलावा कुछ और दे। हाँ, प्रेम देने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। गुरु प्रेम देते हैं कभी कभी डांट कर, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने प्रेम दिया सबसे पहले डांट कर, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो डांट कर, अरे मूर्खों जैसी बातें कर रहे, बातें पंडितों जैसी कर रहे हो मूर्ख तुम एकदम। तो गुरु कभी कभी, लेकिन वो भी प्रेम है। हृदय में प्रेम होगा तो गुरु की डांट भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो फिर किसी के द्वारा कहे गए अच्छे शब्द भी कांटे लगते हैं। तो इसीलिए हम सब प्रेम चाहते हैं, चाहे धन कमाकर, समाज में प्रतिष्ठा पाकर, कोई पदवी पाकर, और उस प्रेम की पूर्णता होती है कृष्ण भक्ति में आकर, इसको प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं। तो ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, अब इसका वर्णन शीला प्रभुपाद ने कहा है, तो हम लोग इसको देखें कि ये क्या है भक्ति रसामृत सिंधु। तो अभी तक हमने जो चर्चा की, तो ये भक्ति रस अमृत सिंधु की चर्चा है। तो भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ है प्रेम, और वो प्रेम प्रकट होता है सेवा से, और सेवा का अर्थ है वो कार्य जो अपने किस प्रियतम को प्रसन्न करे, उसको सेवा कहते हैं। जिससे आप प्रेम करते हो उसको प्रसन्न करे, और उसे प्रेम की परिभाषा दी जाती है। तो ये प्रेम प्राथमिक अवस्था में परिवार, समाज, मानवता के लिए प्रकट होता है। फिर ये एक आगे मूलभूत इच्छा है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे हम वर्णन कर रहे थे, हम हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन जब ये प्रेम कृष्ण से जुड़ता है तब वो पूर्णत्व प्राप्त करता है, और ये भक्ति है। अगर आपके चित्र आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए, ये भक्ति है। और रस क्या है? रस दो रसों का वर्णन हमने किया, भौतिक रस और भक्ति का रस। भौतिक रस चपल है, सुख चपल सुख है, और स्वादहीन है, भोग त्याग करता रहता है। और भक्ति का सुख क्या है? वो ताजा है और शाश्वत है, हमेशा बढ़ता रहता है। और भी कई वर्णन हमने किए हैं। और सिंधु का अर्थ होता है इस सुख का सागर। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ है ये प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रभुपाद लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैदिक प्रमाणों पर आधारित है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे आपके स्वामी जी ने ये लिखा है, आपके सन्यासियों ने लिखा है, हम क्यों इसको स्वीकार करें, हम कैसे माने कि ये ग्रंथ शास्त्र है। तो ये ग्रंथ शास्त्र है क्योंकि शास्त्रों के आधार पर लिखा गया है। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम तो वेद पढ़ेंगे। हमें ध्यान है जब प्रारंभ में हम मंदिर गए थे, हम नए नए थे, तो हम मंदिर आया जाया करते थे। एक दिन मंदिर गए तो एक भक्त ने हमें कहा कि हम लोगों ने लाइब्रेरी खोली है, आप कुछ देखना चाहेंगे लाइब्रेरी में? हमने लगा कि मंदिर में लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छी होगी, वेद होंगे, पुराण होंगे, उपनिषद होंगे। हमने कहा हाँ हाँ हम देखना चाहते हैं। तो वो हमें लाइब्रेरी में ले गए, लाइब्रेरी बनाई थी उन्होंने। तो हमने देखा कि लाइब्रेरी में सब जगह ज्यादा अधिकतर प्रभुपाद के ही ग्रंथ, ज्यादा ही प्रभुपाद के ग्रंथ। तो हम सब जगह देख रहे हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, भागवतम थी सब, लेकिन प्रभुपाद के। तो हमने उन भक्त से कहा कि ये तो ठीक है आप ये जो लाइब्रेरी आपने खोली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें ज्यादातर आपके स्वामी जी के ही ग्रंथ हैं। तो वो भक्त नए ब्रह्मचारी थे, ज्यादा कुछ कह नहीं पाए इस विषय में। तो हमने कहा कि ये तो सारे आपके स्वामी जी के ग्रंथ हैं, आपके पास वेद हैं तो दिखाइए, उपनिषद हैं तो दिखाइए। हमने कहीं से शब्द सुन लिए थे वेद उपनिषद। हमने कहा कि वेद दिखाई, उपनिषद दिखाई। वो बेचारे समझा नहीं पाए, बोले नहीं नहीं हमारे पास तो यही है। हमने कहा नहीं, रुचि नहीं, चले गए। तो ऐसा होता है कि हम लोग सोचते ये तो आपके ग्रंथ हैं, तो ये ग्रंथ हमारा नहीं है, ये प्रमाणिक ग्रंथ है। क्योंकि शास्त्रों में नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुणों यहां से वहां से वहां से कोट लेकर उसको बनाया गया है। तो जिस बात को रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं, जो महाप्रभु ने उनको समझाई, उसको शास्त्रों से प्रमाण देकर उन्होंने कहा है, इसलिए ये भी शास्त्र ही है। तो ऐसे प्रभुपाद यहाँ भक्ति रसामृत का वर्णन करते हैं सिंधु का। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि इंद्रिय सुख की कुछ बूंदों को हम समेट सकते हैं, लेकिन एक समुद्र है जो बहुत सरलता से उपलब्ध है, भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें हम गहराई तक जा सकते हैं। तो किन के लिए है भक्ति रसामृत सिंधु? इसमें लिखा है प्रभुपाद ने कि उन लोगों के लिए जो जीवन में भ्रमित हैं और हताश हैं, और मुख्यतः उन व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न हैं, जो भक्त हैं, तो उनके लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु है जिसको श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो ये हम लोगों ने आमुख पर पूरे तो नहीं पढ़े, लेकिन प्रमुखता जो प्रभुपाद ने विषय लिए हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास किया, ये आमुख था। और इसके बाद अब भूमिका प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं। तो आमुख एक दिया है, फिर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या है ये ग्रंथ, तो ग्रंथ का क्या विषय है, तो उसको सब विस्तार से भूमिका दी है। तो हम इसको भी आज थोड़ा प्रारंभ करेंगे। इससे पहले आप में से किसी के अगर कोई प्रश्न, अब तक जो हमने पढ़ा जो कहा उस पर कोई भी प्रश्न हो, तो कुछ प्रश्नों को लेंगे और फिर भूमिका को प्रारंभ करेंगे। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप या तो चैट पे या अब अगर हाथ उठाएंगे तो दिखाई देगा, तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके, ये एक हाथ उठा हुआ है, किसका है? मायापुर धाम प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने रूप गोस्वामी जी का और सागर मलिक जी का पहले वाला नाम बताए थे तो वो थोड़ा कन्फर्म करना
था। अमर और संतोष, अमर और संतोष, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। और कोई प्रश्न किसी का? किसी का हाथ तो नहीं दिख रहा है तो।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है?
हरे कृष्णा।
ओके, हाँ हाँ, यस मैम।
हाँ प्रभु जी, आपने कहा जैसे कि प्रेम में पूर्णता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, तो पर प्रेम में तो पूर्णता हुई ना, हमें कृष्ण के पास जाके तो हम पूर्ण हो ही जाते हैं ना, प्रेम वो पूर्ण हो ही जाता है ना।
हाँ जी, लेकिन ये पूर्णता ऐसी है कि वो रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम मतलब बढ़ता जाता है प्रतिपदम। तो पूर्णता हो जाने का अर्थ क्या है कि इसके आगे और हम किसी को ढूंढते नहीं है आनंद के लिए, लेकिन ये आनंद ही ऐसा है कि वो वहां नहीं रुक जाता, क्योंकि अगर संजय रुक जाता तो हो सकता है हम और किसी की कामना करते, लेकिन ये ऐसा है कि बढ़ता जाता, फिर वो रुकता नहीं है। एक बार बस कृष्ण पर आ गया तो आनंद बढ़ता है, आनंद का स्रोत फिक्स हो जाता, मतलब आनंद कृष्ण से मिलेगा बस वो फिक्स हो गया, लेकिन आनंद बढ़ता जाता। ठीक है माता जी? ओके, और
हरे कृष्णा।
श्रीवास गौर प्रभु, हरे कृष्णा।
तो आपने कहा था भक्ति में गन्ने को चूसने का एग्जांपल बताया आपने, तो ये तो भौतिक नहीं हुआ? जैसे
भौतिक उदाहरणों से हम लोग आध्यात्मिक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, अगर भौतिक उदाहरण नहीं होंगे तो कैसे आध्यात्मिक चीजों को समझेंगे। जैसे बताया जाता है कि श्री कृष्ण का वर्ण घनश्याम, घने बादल की तरह है, बादल तो भौतिक है लेकिन उसका उपयोग किया जाता है समझाने के लिए आध्यात्मिक चीजों को। तो गन्ने का रस, दोनों गन्ने का जो उदाहरण है दोनों के लिए आता है, जैसे भौतिक रस के लिए आता है कि हम चबाते रहे, चबाए चबाए फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता है, वो रस चला जाता है। तो भक्ति के लिए किया कि जैसे ही गन्ने को कहीं से भी आप चबाएं तो वो मिठास देता है, तो उस दृष्टि से भक्ति के लिए बताया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न या भूमिका की ओर बढ़े? ओके, यहाँ चैट में एक दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि आपने कहा कि जीव गोस्वामी ने चेतावनी दी है कि केवल भक्त को ही ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ये बुक रीड करनी, तो हम कैसे समझें कि हम इसे रीड कर सकते हैं? हमने ये नहीं कहा कि भक्त को ही पढ़ना चाहिए, अगर इसकी रिकॉर्डिंग है तो आप पीछे जाकर वापस सुन लीजिए। हमने ये कहा कि भक्ति प्राप्त करने के लिए इसको पढ़ना चाहिए, कि अगर कोई भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के अलावा इसको पढ़ता है तो उसको श्राप मिलेगा। तो इसलिए हम सबको भक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए हमें अनुमति है पढ़ने की, हम पढ़ सकते हैं। और एक प्रश्न है,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ये कहाँ से आकाशवाणियां आती हैं पहले ये बताइए, कोई दिख नहीं रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, यस मैथिली बोलिए।
प्रभु जी आपने बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु उन लोगों के लिए है जो जीवन में भ्रमित और हताश है, और हमने पहले पढ़ा था कि भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए है जो ऑलरेडी भक्ति में प्रवेश कर गए, मतलब
कृष्ण। हमने दोनों लिखे थे, अगर आप देखें तो दोनों लिखे हुए थे।
हाँ हाँ, तो जो भक्ति में है ऑलरेडी वो भ्रमित और हताश होंगे?
नहीं, ये उन लोगों के लिए है भक्ति रसामृत सिंधु जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर भ्रमित और हताश है, जो प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को लेकिन उन्हें मार्ग नहीं पता, भ्रमित है और बार बार उन्होंने ढूंढ लिया लेकिन हताश हो चुके हैं, और उन्होंने प्राय इस स्तर पे आ गए कि हम छोड़ देते हैं, भगवान मिलने वाले हैं नहीं, ये भक्ति वक्ति कुछ ठीक नहीं है, तो हताश हो चुके हैं और भ्रमित हो चुके हैं, क्योंकि कई सारी पूतनाओं ने उनकी जो भक्ति वो प्रारंभ करना चाहते थे उसका नाश कर दिया, मतलब कई ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जिनको जिन्होंने सही भक्ति प्रदान नहीं, तो इसलिए भ्रमित हैं और हताश हैं, पाना चाहते हैं भगवान को लेकिन जानते नहीं, तो उनके लिए मार्ग दिखाएगा। और दूसरा हम लोगों के लिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हैं या भक्तों के लिए, क्योंकि ये भक्ति करने की सही विधि को हमें बताएगा, भक्ति के सही उद्देश्य को हमें बताएगा, साथ ही साथ क्या प्रक्रियाएं हैं भक्ति की उसे हमें बताएगा, और शुद्ध भक्ति क्या है, केवल भक्ति ना करें, शुद्ध भक्ति के स्तर तक हमें उठाए। ठीक है
जी प्रभु जी, थैंक यू।
हरे कृष्णा। ओके और कोई प्रश्न है किसी के? कि यहाँ चैट में एक प्रश्न है, भौतिक सुख की तुलना खीर से की गई है, खीर जिसमें पत्थर डाल दिया गया हो। अच्छा, और सही में तो ऐसा कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर सामृत सिंधु में कहा गया है कि कुछ रस है भौतिक जगत में, तो क्या है इसको समझाइए। ऐसा भी कहा गया है कि सच्चा सुख इस जगत में नहीं है, लेकिन दो के बीच में जो समय होता है उसको आनंद कहा गया। यस, जो सब आपने लिखा वो सब सही है। तो भक्ति का जो सुख है, यहाँ कहा गया कि रस है, तो रस है कैसे है, वो कष्ट के साथ मिला हुआ रस है। इसका उदाहरण है कि जब एक ऊंट वो कांटों को खाता है, तो वो कांटों को खाता है तो कांटे उसको अंदर से गले में पूरा उसको छील देते हैं और उसका खून निकलता है, और वो खून मिक्स होकर वो कांटे खाता है, उसको बड़ा आनंद आता है, उसको लगता है कि कितना स्वाद है, वो और कांटे खाता है, लेकिन वो जानता नहीं है कि वो जो खा रहा है वो उसका ही खून है, उसको ही नुकसान दे रहा है। तो इसी तरह भौतिक सुख में, भौतिक जगत में ये आनंद है थोड़ा सा, जो व्यक्ति को लगता है कि आनंद है, जो कहा गया कि थोड़ा सा आनंद है, वो इतना ही आनंद है, लेकिन दरअसल वो सच्चा आनंद नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में सच्चा सुख है ही नहीं, सुख है सच्चा सुख नहीं, सच्चा सुख केवल भक्ति में है। और इसीलिए इस जगत में जो भी सुख है दो दुखों के बीच का अंतर है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर लें, सुख प्राप्ति के बड़े मार्ग ले लें, उस सबको श्रम एव ही केवलम कहा गया, बस। तो इसीलिए जो सुख है इस जगत का वो ऐसा सुख है। ठीक है ओके, और किसी का प्रश्न है? सब लोग कृपया अपने आप को बाकी म्यूट रखें ताकि आवाज ना आए आपके घर की। यस, और कोई पूछना चाहते हैं प्रश्न, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। कंचन माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी, बोलने से पहले आप। सॉरी, एक बार और कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा कि भक्ति में तीव्रता और फिर हमें ना फिर धीरे हो जाते हैं, मतलब कभी कभी बहुत तीव्रता, जैसे पुरुषोत्तम आस आ रहा है, हम जल्दी मंगला उठ के जाना, और फिर कभी ऐसा क्यों, तो इसका कोई कारण हमारा आलस्य है या फिर हमारा कुछ पाप कर्म या क्या?
अभी तक हमने भक्ति के रस का आस्वादन नहीं किया, एक ही कारण है, क्योंकि जिस दिन भक्ति के रस का आस्वादन हो जाएगा उस दिन चिंता नहीं होगी। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कब उठना चाहिए, तो ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं बड़ी सरलता से, हम सुन रहे थे और प्रभुपाद बड़ी सरलता से कहते हैं कि देखिए आप लोग कितनी देर तक सोते रहते हैं, लोग दोपहर दोपहर तक सोते हैं, तो सोना तो ठीक है लेकिन जल्दी उठना चाहिए, 2 बजे उठ जाना चाहिए। और इतनी सरलता से प्रभुपाद ने कहा, हमने उसको पॉज करके वापस पीछे करके सुना कि 2 ही कहा कि कुछ और कहा प्रभुपाद ने, वो कहते 2 बजे उठ जाना चाहिए, दोपहर को 2 बजे नहीं, सुबह 2 बजे उठना चाहिए, तो ये उनके प्रवचन में प्रभुपाद ने कहा है। तो उनके लिए बड़ा सरल था कि 2 बजे, और हम लोगों के लिए 2 बजे रोज उठना, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, दिन में कितना काम है क्या। प्रभुपाद क्या काम नहीं करते थे, दिन भर काम करते थे, लेकिन फिर भी वो उठते थे 2 बजे या सोते ही 12 बजे थे, फिर 2 बजे उठ जाते थे। तो खैर हमें नकल नहीं करनी है, इसका अर्थ ये नहीं कि कल से आप लोग या आज रात से सब 2 बजे उठ जाएं और जब हम यहाँ क्लास देने बैठे तो सबके वीडियो बंद हैं और हम बुला रहे हरे कृष्णा कोई है, सब है लेकिन सब दिव्य निद्रा में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर कहने की बात ये है कि हम लोग क्योंकि अभी भक्ति रस का स्वादन नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें ये चीज।
हरे कृष्णा।
और कोई प्रश्न? अभी समय है, हम नहीं तो भूमिका प्रारंभ कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आगे चले। अगर आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न ना हो तो।
प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, मैं कविता हूँ, दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने अभी अभी जस्ट आपका ज्वाइन करा था थोड़ी देर पहले। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हमारे कर्म है, मुझे अभी 5 महीने ही भक्ति में आए हुए हुए हैं, 5 महीने से ही मैंने शुरू करा है कृष्णा की पूजा करना, माला जाप करना। तो उससे पहले जो हमारे कर्म हुए हैं तो उनकी माफी हमें मिलेगी या उनका क्या हमारा हिसाब किताब रहेगा?
आपकी क्या इच्छा है? आप माफी चाहते हो? आप माफी चाहते हो या नहीं चाहते? आपकी क्या इच्छा?
बिल्कुल प्रभु जी, माफी तो चाहेंगे क्योंकि हमने अनजाने में भी जानबूझकर बहुत सारे ऐसे कर्म कर रखे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने क्या क्या करा हुआ है, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं थी, ज्ञान भी नहीं था।
श्री कृष्ण ये भावग्राही जनार्दन है, तो जब देखेंगे कि आपके हृदय में ये इच्छा है और सही में पश्चाताप आप कर रहे हो कि जो भी हमने किया ठीक है हो गया, अनजाने में हो गया, जानते नहीं थे, लेकिन जो भी किया गलत किया पश्चाताप कर रहे हैं, तो वो पश्चाताप ही बहुत है हमारी उन गलतियों को या जो उन अपराधों को हमने किया उसे खत्म करने। अगर हमें हृदय से पश्चाताप हो जाए कि हमने बहुत गलत किया, वो बहुत है। भक्ति इसकी आवश्यकता ही नहीं है, कृष्ण तक पहुंचना और कृष्ण इसको दूर करना ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कृष्ण भक्ति में आकर केवल पश्चाताप कर लेते हैं कि जो भी हमने किया पूर्व में वो बहुत गलत था, अनजाने में अज्ञान में हो गया, प्रयास करेंगे आगे से कभी ना हो, आपके पाप वैसे ही। ये कृष्ण भक्ति और ये भगवान के नाम लेने का महत्व है।
धन्यवाद प्रभु जी, ये शंका मेरे मन में काफी टाइम से थी, हर ये बात हम हर किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये शंका मैं दूर करना चाह रही थी। हालांकि इससे मेरे कर्मों में नहीं आ रहा था, जो मैंने अब 6 महीने से 5 महीने से शुरू कर रखा है उससे मैंने ये स्वीकार कर रखा था कि प्रभु जी अगर मुझसे कोई गलती हुई है, श्री कृष्ण अगर मुझसे गलती हुई है, तो उस सजा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं उस सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ।
सजा केवल इतनी है कि आप नियम से जप कीजिए और उसको सजा मानकर मत कीजिए, कृपा मानकर कीजिए।
नहीं नहीं, वो तो जो नियम पालन कर रही है हाँ उसमें तो सजा नहीं मान रही मैं, लेकिन एक मन में थोड़ा सा शंका था, वो जो आपने दूर करा, धन्यवाद बहुत बहुत।
सारे संशय दूर करके भक्ति कर ली। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
और कोई कुछ कहना चाहे इससे पहले कि आगे बढ़े? सूरत किरण माता जी कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए मत।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भक्ति रस की, हरे कृष्णा, ये भक्ति रस की विभिन्न प्रवृत्तियां में जो फोर्थ है मुक्त भावना उत्पन्न करता है प्रभु जी, वो समझ में नहीं आ रहा है।
मुक्ति के लिए वहां पर
हरे कृष्णा,
आवाज आ रही है आपको?
हाँ अब आ रही है प्रभु जी।
हाँ
प्रभु जी, मुक्त भावना उत्पन्न करता है,
मुक्त नहीं, मुक्ति की भावना, मुक्ति भावना। तो आपका प्रश्न मुक्त भावना न करता, मुक्त नहीं, मुक्ति की भावना को प्रकट करता है। मतलब इस जगत से ये जो कष्ट इत्यादि हैं, ये भौतिक रस है, इसको त्याग कर सही रस में प्रवेश करने की भावना को स्थापित करता है। ठीक है, तो मुक्ति शब्द है, मुक्त नहीं है। अगर वहां पर शायद मुक्त लिखा हो तो उसको ठीक कर लीजिए, वो मुक्ति। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, फिर अभी कितना समय बाकी है? 10 मिनट बाकी है, थोड़ा सा भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। अनुमति है कर लें कि आप में से किसी का विरोध है? ठीक है, आशा करते हैं अभी तक जो कहा आपको समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा ऊपर से तो नहीं गया है ना किसी के, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को कुछ ऊपर से चला जाता है, ऐसे आप लोग कहते हैं, हमें पता है नहीं जाता, आप लोग सब बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, लेकिन ठीक है। सो आगे चर्चा शुरू करते हैं भूमिका की। अपना अपना आप लोग सब माइक म्यूट पे रखिएगा ताकि कोई आवाज नहीं आए आपके काम पे। यस, सो कहाँ पे थे हम लोग? ओके, भूमिका की चर्चा करेंगे। सो आप सबको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके, जिनके वीडियो ऑन है अगर वो सर हिला देंगे तो पता चलेगा कि यहाँ दिख रहा है। वेरी गुड, बड़े अच्छे तरह से आप लोग, बड़े अच्छे बच्चे हो एकदम, ओबीडियंट। ओके, सो भूमिका की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भूमिका के तीन भाग हैं, ये जो भूमिका प्रभुपाद ने लिखी है तो तीन भाग हैं इसमें। पहला है मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब प्रारंभ, ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, मतलब कुछ प्रणाम किए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है इत्यादि, उसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है पुस्तक की विषय सूची का संक्षिप्त विवरण किया है, क्या विषय हैं पुस्तक में पूरे, उसका वर्णन हुआ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे वो है शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो ये भूमिका में प्रभुपाद ने दिया है, इसको हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण दिया है प्रभुपाद ने। मंगलाचरण का अर्थ होता है, तीन भाग होते हैं मंगलाचरण के। पहला वस्तु निर्देश, मतलब जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वस्तु के उद्देश्य को परिभाषित करना, क्या है ये, क्यों ग्रंथ लिखा जा रहा है, क्या उद्देश्य है इत्यादि, तो ये उसका यहाँ पर चर्चा होता है। और दूसरा नमस्कार किया जाता है, तो नमस्कार अर्पण करना, किसको नमस्कार करते हैं, भगवान को, गुरुजनों को, वैष्णवों को। और तीसरा आशीर्वाद, ये ग्रंथ पढ़ने से क्या होगा, आपको क्या लाभ मिलेगा। तो ये तीन भाग होते हैं मंगलाचरण के, वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। तो इनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लिखा गया है भूमिका में। तो जो नमस्कार है भगवान के बाद, फिर गुरु गुरु को किया गया है और वैष्णव वंदना की गई है, तो गुरुओं की वंदना और वैष्णवों की वंदना ये भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सो ये ऐसे मंगलाचरण है, तीन भागों में बटा हुआ है। तो इसकी हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं या जब आपको पढ़ाया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति शास्त्री के लिए, तो इनमें ये बड़े और विस्तार से चर्चा में जाते हैं, लेकिन हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे हैं इसलिए ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे। तो वस्तु निर्देश सबसे पहले उसको कहते हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक को लिखते हैं। यहाँ श्लोक नहीं दिया है, प्रभुपाद ने अनुवाद दिया है। श्लोक ये है, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रस्मर रुचिरुद्ध तारका पाली ही कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयां विदुर जयति। तो ये वस्तु निर्देश है, अखिल रसामृत मूर्ति ही, तो कृष्ण अखिल रस अमृत मूर्ति हैं, तो इसका वर्णन किया गया है। तो क्यों कृष्ण अखिल रस मूर्ति हैं? क्योंकि कृष्ण से सारे रस आते हैं और कृष्ण सारे रसों का आस्वादन भी करते हैं अपने भक्तों के साथ, इसीलिए उन्हें रसिक शेखर भी कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। कृष्ण रसराज हैं, कृष्ण रसिक शेखर हैं, क्योंकि रसों का आस्वादन करते हैं। तो ये जो शब्द है अखिल रस अमृत मूर्ति, तो अखिल रस मतलब सभी रसों के आगार हैं भगवान। जो भी रस हम इस जगत में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनके आगार हैं श्री कृष्ण। आगार मतलब स्रोत, उनसे आते हैं और उनको 12 रसों में बांटा गया है। 5 प्रमुख रस हैं और 7 गौण रस हैं। तो 12 रस टोटल हैं। 5 प्रमुख रस कौन से हैं आप सब जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस हैं। और अमृत मूर्ति क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान परम आनंद के शाश्वत मूर्ति हैं, आनंद घन हैं भगवान। अगर भगवान के शरीर को काटा जाए, काट नहीं सकते हैं, काटा जाए कुछ निकालने के लिए, हमारे शरीर को काटा जाए तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा, हड्डी निकलेगी, इत्यादि गंदगी निकलेगी। भगवान के शरीर को काटा जाए तो हर जगह से आनंद निकलेगा, आनंद घन है। ऑफकोर्स काट नहीं सकते और आप प्रयास भी मत कीजिए कि देखें कि है कि नहीं है। तो आपके घरों में जो विग्रह हैं लेकर चाकू, आप थोड़ा प्रयास करें। तो भगवान सच्चिदानंद रूप है, आनंद घन है, तो इसीलिए वो अमृत मूर्ति ही, रसमृत मूर्ति ही। तो 5 ये रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इनकी हम चर्चा आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। और 7 गौण रस हैं, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और भयानक रस। ये 7 गौण रस हैं। इनके भेद को संक्षेप में कहते हैं, आगे समझाएंगे विस्तार से। ये प्रमुख रसों और गौण रसों में क्या भेद होता है, जो 5 रस हैं पहले जिसका हमने वर्णन किया, तो वो यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं 5 रस, तो इन रसों में जीव का भगवान से संबंध होता है। केवल इन्हीं 5 रसों में संबंध हो सकता है। कोई शांत रस में भगवान से जुड़ा होगा, कोई दास्य रस में, कोई साख्य में, कोई वात्सल्य में और कोई माधुर्य। और इन्हें स्थाई रस कहा जाता है। स्थाई मतलब ये कभी बदलते नहीं, ये ऐसे ही रहते हैं। तो फिर ये 7 रस और क्या है, ये संचारी रस कहलाते हैं, आते जाते रहते हैं, जैसे वीर रस। अब अगर हम भीष्म देव का उदाहरण लें, आपको इन दोनों रसों को समझाते हैं, भीष्म देव का उदाहरण लें, तो भीष्म देव का संबंध भगवान से दास्य रस में है। लेकिन जब युद्ध हो रहा है तो वीर रस में आस्वादन हो रहा है। भीष्म देव तीर चला रहे हैं, कृष्ण को भी लग रहा है, तो ये सब वीर रस। कृष्ण गुस्से में आकर भीष्म की ओर भाग रहे हैं, पहिया उठा करके, हंतायम मार दूंगा, ये वीर रस का स्वाद। तो ये स्थाई नहीं है, हर समय नहीं है। अगर हर समय होता तो जिस समय भीष्म देव बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और कृष्ण आते हैं, तो भीष्म सोचते 1-2 तीर निकाल कर और अभी फेंक दो इनके ऊपर, वीर रस का स्वाद करें, नहीं। तब उन्होंने प्रणाम किया, प्रार्थनाएं अर्पण की दास्य रस में, या युद्ध के पहले भी जब भी मिलते थे प्रणाम करते थे भीष्म देव, प्रार्थनाएं करते थे, भगवान के रूप में घोषित करते थे। तो इसीलिए स्थाई रस और संचारी रस, स्थाई रस 5 हैं, संचारी रस ये 7 हैं जो आते जाते हैं, मतलब भगवान की लीला में आस्वादन बढ़ाने के लिए। जैसे ग्वाल बाल हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, वो हास्य रस है, लेकिन ग्वाल बालों का भगवान से साख्य रस में संबंध। तो ऐसे अलग अलग ये रस होते हैं। तो ये रसों का वर्णन किया गया इसमें, इस श्लोक में। और 3 प्रकार की गोपियों का वर्णन हुआ है, प्रधान गोपियों का 3 श्रेणियों का वर्णन हुआ है। अगर जैसे आप श्लोक देखें, अगर हमने जो श्लोक वहां पे लिखा था, तो श्लोक में था रुद्ध तारक पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रयान विद्रुजयती। तो इसको समझाया है इस तरह से। ये कौन लाइन ऐसे ला रहे हैं, थोड़ा सा वो उसको बंद करना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बंद नहीं किया। ये कोई भी बीच में लाइन नहीं करें आप लोग सब, हमें तो लगा था कि सब वरिष्ठ भक्त हैं, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। तो ये बीच का कृपया उसको ऐसा ना किया कीजिए, नहीं तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अभी समय हो गया, कल बदल देंगे। तो सात ये जो रस है, तो इनमें ये वर्णन अब तीन प्रकार की गोपियों का है, बस इसको कह के रुकेंगे। प्रधान गोपियों की तीन श्रेणियों का वर्णन किया, तारक पालिका का नाम दिया, तारका और पालिका, ये कनिष्ठ स्तर की गोपियां हैं, प्रधान गोपियों में कनिष्ठ स्तर। तो तारका पालिका ये क्या करती हैं, इनको श्री कृष्ण नियंत्रण करते हैं, तो इसीलिए ये कनिष्ठ मानी गई हैं। मध्य स्तर की श्यामला ललिता जो वर्णन किया गया श्लोक में, तो वो मध्य स्तर की गोपियां हैं, तो कृष्ण उनको अपने समान मानते हैं। और फिर श्रीमती राधा रानी का वर्णन किया गया, और क्या कहा गया श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते हुए कि वो आनंद देती हैं कृष्ण को, लेकिन वो कृष्ण को नियंत्रण करती हैं। तो इन तीनों श्रेणियों में भेद क्या है, प्रथम श्रेणी कृष्ण नियंत्रण करते हैं, मध्य श्रेणी कृष्ण अपने समान मानते हैं, और श्रीमती राधा रानी वो श्री कृष्ण को नियंत्रण करती हैं। ऐसे इन तीन गोपियों की श्रेणी का वर्णन किया गया है, और उसके आगे भक्तों का वर्णन प्रभुपाद करते हैं, इसको हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है और आप सब जानते हैं कि हमें अच्छा लगता है समय पर प्रारंभ करना और समय पर समाप्त करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा अच्छा लगा आप सबके बीच फिर से एक बार आकर। तो कल सुबह ठीक 8 बजे इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आशा करते हैं कि आप सबकी सेवा कुछ हम कर पाए। और भक्ति रसामृत सिंधु आगे भी ग्रंथ बहुत अच्छा है, बड़ा ही रुचिकर है, बहुत आनंद आएगा इस ग्रंथ में, और आप लोग तो इस आनंद को दोबारा ले रहे हैं। देखिए प्रमाण है, अगर आपको आनंद नहीं आया होता तो दोबारा नहीं लेते आप इसको, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, इससे पहले कि समाप्त करें, कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट्स, कोई कोई विरोध? राधा चरण प्रभु हैं या वो कहीं गए हुए हैं? अगर राधा चरण प्रभु हैं सो ही कैन से समथिंग कि क्या करना है। आई थिंक शायद नहीं है प्रभु जी। ओके, और कौन कोऑर्डिनेटर कौन है यहाँ पर इस समय? ओ सर, गौरांग प्रिय प्रभु, यस आप दिखे नहीं।
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, आपका वो स्पीकर हटाना पड़ेगा आपको।
आप आ रही प्रभु जी?
हाँ जी आ गई, अब आ गई। अब
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, जो आपने हमारा निवेदन स्वीकार करके इसको रिवीजन करा रहे हमको, क्योंकि पहले पढ़ा था लेकिन कुछ स्तर का था, थोड़ा काफी ऊपर से निकला, तो आप थोड़ा आसान करके समझा रहे हमारे हमारे स्तर पे आके समझा रहे हमको, तो बहुत 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 दिल से धन्यवाद।
दरअसल हम आपके स्तर पर आके नहीं समझा रहे, हम अपने स्तर पर समझा रहे हैं, इसीलिए समझ में आ रहे हैं। हमारा वो स्तर नहीं है जो आप लोगों ने पहले सुना, इसलिए हम अपने स्तर पर रहकर जो कह सकते हैं वही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कुछ कोई कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न, कोई सुझाव? ओके ठीक है, सो गौरांग प्रिय प्रभु इसको समाप्त करें आज की क्लास।
यस प्रभु जी।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल आपसे ठीक 8 बजे भेंट होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री कृष्ण प्रेमानंद की जय।